Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Svetashvatara Upanishad, Chapter 5 and 6, presented by Swami Sri Atmananda Giriji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Svetashvatara Upanishad ke swadhyay mein dusre adhyay ka chautha mantra. युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विवेदा त्रादधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः विहोत्रा दधे वयुना विदेक इन्महि देवस्य सवितुः परिष्टुतिः हाँ, ये वैदिक मंत्र श्रुति वैदिक मंत्र ऋचा ये उपासना और कर्म कांड में भी इन मंत्रों का विनियोग हुआ है। इसीलिए ये मंत्र प्रार्थना परक है। वैदिक प्रार्थना कुछ प्रार्थना व्यक्तिगत होते हैं और कुछ प्रार्थना सामूहिक होते हैं। प्राय करके वैदिक मंत्रों की वैदिक प्रार्थनाएं प्राय करके सामूहिक ही होती हैं। ऋषिगण समूह में प्रार्थना करते हुए ज्यादा मिलते हैं। व्यक्तिगत प्रार्थना की अपेक्षा समूहगत प्रार्थना करते हुए ज्यादा मंत्र मिलते हैं, जैसे सहनाववतु इत्यादि मंत्र, ये सामूहिक है। इसी तरह ये मंत्र भी सामूहिक ही है। ये द्वितीय अध्याय ये प्रार्थना उपासना के लिए है। और वेद विशेष करके सूर्य की उपासना में ज्यादा महत्व देता है। शायद प्रत्यक्ष के रूप में प्रकाश से युक्त होने के कारण और सूर्य को ज्यादा महत्व दिया है वेद ने, इसलिए ज्यादा करके सूर्य की उपासना यहां की जा रही है। गायत्री मंत्र भी सूर्य की ही उपासना है। गायत्री छंद होने के कारण उसको गायत्री कह दिया गया है। मंत्र सूर्य का मंत्र है, गायत्री देवी की उपासना का मंत्र नहीं है। सूर्य उपासना का मंत्र है, गायत्री देवी नाम का कोई नहीं है वेद में। ये तो व्यक्तियों ने कल्पना कर दी, गायत्री स्त्रीलिंग, क्योंकि छंद स्त्रीलिंग है, गायत्री छंद स्त्रीलिंग में है, इसलिए उन्होंने सूर्य गौण कर दिया, आजकल देवी मुख्य हो गई। जबकि मुख्य इस मंत्र के मुख्य देवता भगवान सूर्य है। इसी तरह गणानंथा गणपति गुंग हवामय, ये जो मंत्र आता है, ये गणेश की उपासना नहीं है, ये प्राण की उपासना है और प्राण की प्रार्थना है प्राण से। लेकिन यह गणानंथा गणपति ये शब्द बीच में आ गया तो गणेश परक ही हो गया, तो गणेश देवता के परक हो गया, प्राण परक गौण हो गया। प्राण की उपासना गौण हो गया, गणेश की उपासना मुख्य हो गया। ऐसे दक्षिणा में हिरण्य गर्भ, तो हिरण्य हाँ भूतस्य जात पतिरेकासि सदा धारा पृथिव्यां द्यामुते कस्मै देवाय विखाद्यमिदम् इत्यादि। हिरण्य गर्भ गर्भस्तम हेमबीज विवावसो अनंत पुण्यफलद मत शांति प्रयच्छति इत्यादि इत्यादि मंत्र दक्षिणा में प्रयोग शुरू हो गया। अब ये हिरण्य गर्भ की उपासना का मंत्र दक्षिणा में चला गया। ऐसे चलता है, सन्नो देवी रविष्ट है, वो शनि की उपासना में चला गया मंत्र इत्यादि। तो यहां प्रार्थना है, तस्यैवं अनुजानातो महति परिस्तुति ही कर्तव्य इत्याह। अब वेद में बड़ा विचित्र व्याकरण, पाणिनीय व्याकरण के अनुसार वेद का अर्थ नहीं चलता है। अनुजानातः उसी के अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए, आज्ञा प्राप्त करने के लिए किसके माने, वही सविता के, क्योंकि उसी के आज्ञा से सभी अध्यात्म यानी अधिदेवों के आज्ञा से ही अध्यात्म परिचालित होते हैं, तो उसके आज्ञा पाने के लिए। तो अनुज्ञा तो अनुजाना तो अनुज्ञा प्राप्ति के लिए यानी अनुजाना तो महति परिस्तुति ही, अपरिस्तुति शब्द है, स्तुति शब्द है, उस परमात्मा की महति पूरी बार बार स्तुति की जाती है, महान स्तुति की जाती है। तो परिस्तुति यानी अच्छी तरह महान स्तुति कर्तव्य इत्या, तो उसी की स्तुति करनी चाहिए, इस अर्थ में ये चौथा मंत्र है। युञ्जते मन उत युञ्जते धियो विप्रा। विप्रा शब्द का संस्कृत का सामान्य अर्थ ब्राह्मण, तो यहां ब्राह्मण नहीं है, विप्र शब्द का अर्थ केवल ब्राह्मण नहीं लिया गया है। होत्रा, अब यह होत्रा शब्द का अर्थ होता है आहुति देने वाले, है ना, होत्रा सामान्य अर्थ यह है। लेकिन यह सभी लक्षण का अर्थ करके यह व्याख्या की जा रही है। अब दी शब्द का अर्थ सामान्यतया बुद्धि के लिए करते हैं, लेकिन यहां बुद्धि के लिए प्रयोग न होकर ज्ञान इंद्रियादियों के लिए कहा जा रहा है। तो उसी के प्रेरणा से मन और इंद्रियां युञ्जते प्रयुञ्जते, वो इन इंद्रियों का प्रयोग करता है, उसके अनुज्ञा से आज्ञा से ही ये इंद्रियां प्रवृत्त होती हैं। होत्रा यानी यज्ञ करने वालों को तो इंद्रिय चाहिए ही, और धातु प्रसाद करके तो उपनिषद ने कह दिया ही है। यहां धातु शब्द का अर्थ धातु प्रसादात परमात्मा आत्मना इत्यादि अन्य श्रुतियों में आ गया। धातु प्रसाद का अर्थ भी वही मन और इंद्रियों की प्रसन्नता से ही वो परमात्मा की प्राप्ति संभव है। तो युंजते मन उत इंजते दियो विप्रा विप्रस्य बृहतो विपश्चितः। विपश्चित शब्द का सामान्य अर्थ होता है ज्ञानी, है ना? हाँ, सामान्य देखने वाला और विशेष रूप से देखने वाला विपश्चित, विशेषण पश्यति इति विपश्चित, हाँ इसका मतलब ज्ञानी। विपश्चित शब्द का अर्थ विद्वान, आत्मा के लिए भी विपश्चित शब्द कई बार आया है। कबीर मनीषीर परिभू स्वयंभू या था तथ्य तो अर्थान मेधाचाचतीभ्य समाभ्य, कवि शब्द आ गया आत्मा के लिए, विपश्चित शब्द आता है। विहोत्रा ददे वयुना विद एक, इन मही देवस्य सवितुः परिष्टुतिः। वास्तव में ये जो वैदिक मंत्रों हैं कहीं कहीं तो स्पष्ट अर्थ लगता है, कहीं कहीं एक एक अक्षर के एक एक अर्थ होता है, खाली एक अक्षर का एक पूरा अर्थ निकलता है। तो इसीलिए वैदिक अर्थ निकालने के लिए वैदिक ग्रामर है, उसके आधार पर ही वैदिक मंत्रों का अर्थ सही निकलता है। तो पाणिनीय व्याकरण से वहां लागू नहीं होता है। देवस्य सवितुः मही महान, बृहतो विपश्चित, बृहत माने, बृहत माने व्यापक या बड़ा, है ना? विप्रस्य, विप्र शब्द का अर्थ होता है सामान्यतः ब्राह्मण, विप्र विप्रस्य। अब यहां लाक्षणिक अर्थ है, पहला विप्र होत्रा है ना, यज्ञ करने वाले, दूसरा विप्र परमात्मा, ब्रह्म को भी विप्र कह देते हैं कहीं कहीं जो हो, क्योंकि भाष्यकार ने अर्थ जो किया है वो सब एक एक पद का अर्थ किया है, वो निकल जाएगा क्योंकि हम लोग भाष्य पढ़ ही रहे हैं। युंजत इति युंजते योजयंती ये विप्रा, जो विप्र यानी ब्राह्मण लोग। अब यहां ब्राह्मण केवल न लेकर जो उपासक लोग, ये अर्थ ले लेना। तो उपासक तो सामान्य अर्थतया आप लोग नाराज नहीं होना, तो यहां वेद ने द्विजाति को ही वेद का अधिकार दिया, वैदिक कर्मों का अधिकार दिया। अब कानून ने सभी को अधिकार दिया है, वेद ने द्विजाति को अधिकार दिया है, क्योंकि हम वेद के अपेक्षा कानून को ज्यादा मानते हैं, है ना? वेद के अपेक्षा हम किसको मानते हैं? कानून को ज्यादा मानते हैं। वेद को नहीं मानेंगे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, बिगड़ेगा कुछ तुम, हम हिंदुओं को बिगड़ेगा, मुसलमानों का क्या बिगड़ेगा वेद को नहीं मानेंगे तो, क्रिश्चियन का क्या बिगड़ेगा वेद को नहीं मानेंगे तो, बोलो। लेकिन कानून को नहीं मानेंगे तो मुसलमान का भी बिगड़ेगा, क्रिश्चियन का भी बिगड़ेगा, हिंदू का, सिख का, सबका बिगड़ेगा, क्योंकि वेद को नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष कोई दंड देने वाला सामने नहीं आता है, आता है? वेद को न मानने पर प्रत्यक्ष दंड देने वाला कोई नहीं आएगा आगे, मरने के बाद जो दंड देगा देगा, लेकिन प्रत्यक्ष तो जीवन में तो कोई दंड देगा नहीं। लेकिन कानून को नहीं मानेंगे तो प्रत्यक्ष दंड देने वाले खड़े हो जाएंगे, होंगे कि नहीं, बोलो। इसलिए व्यक्ति कानून को मानता है, वेद को नहीं मानता, क्योंकि प्रत्यक्ष दंड देने वाला वेद कानून है, प्रत्यक्ष दंड देने वाला वेद नहीं है, परोक्ष दंड देने वाला वेद है ना, और कानून परोक्ष दंड देने में असमर्थ है। क्यों असमर्थ है महाराज? कानून मानव कल्पित है, वेद मानव कल्पित नहीं है। कानून पौरुषेय है, वेद पौरुषेय नहीं है। अंतर यह है, वेद पौरुषेय नहीं है इसीलिए प्रत्यक्ष कोई वेद उल्लंघन करता को प्रत्यक्ष कोई भी परेशानी नहीं होती, इसलिए स्वतंत्र वेद के आज्ञा को उल्लंघन करने इसलिए सभी लोग करते जा रहे हैं। हम भी कर लेते हैं, आप भी कर लेते हो, हम सभी करते हैं। तो युंजते योजयंती, लगाता योजन करना है ना, ये विप्रा, जो विप्र माने मुमुक्षु उपासक, किसको योजन करते लगाते? तो बोले मना, मना योजते योजयंती, मन का योजन करते हैं जो विप्र मुमुक्षु उपासक, मन को लगाते हैं है ना, किसमें लगाते हैं? तो उपासना में लगाते हैं, या कर्म में लगाते हैं, या ध्यान में लगाते हैं, क्योंकि ये ध्यान का ही प्रकरण चल रहा है, या फिर क्योंकि प्रार्थना जो चल रही है वो ध्यान के साधनों के बारे में प्रार्थना चल रही है। ध्यान साधना भगवान भाष्यकार ने अर्थ कर दिया है, उस परमात्मा की कृपा से ध्यान के लिए उपयुक्त साधनों की प्राप्ति होगी, और ध्यान के उपयुक्त साधन के प्राप्ति में साधनों में सबसे पहले इंद्रियां और अंतःकरण है, मन है। मन उत युंजते धिय, धिय शब्द का अर्थ किया इतराणि पि करणानि, मन मुख्य करण है, और मन के इतर जितने भी इंद्रियां हैं करणानि, वह उनके सहकारी का बाह्यकरण यानी सहकारी साधन है। तो उत युंजते धिय इतराणि करणानि, इंद्रियों को फिर धी क्यों कहा? बोले धी हेतुत्वात् करणेषु धी शब्द प्रयोग, लौकिक ज्ञान का साधन होने के कारण करणों को भी धी शब्द से कह दिया गया है। धी हेतुत्वात्, हेतु माने साधन माध्यम, धी हेतु माने ज्ञान के साधन, इंद्रियां कौन से ज्ञान के साधन है? तो लौकिक ज्ञान, प्रमा ज्ञान। हाँ। तो ज्ञान के साधन होने के कारण वहां इंद्रियों को भी धी शब्द से कह दिया गया, धी हेतुत्वात् करणेषु धी शब्द प्रयोग तथा च श्रुत्यंतरम। ये काल्पनिक अर्थ क्यों किया? बोले नहीं, ये श्रुति अंतर, और श्रुति ने इसी तरह व्याख्या की है। यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह, ज्ञानानि तो मनसा सह पंच अवतिष्ठन्ते, पंच ज्ञानानि पांच ज्ञानेन्द्रियां मन के सहित जिस समय वह प्रतिष्ठन्ते स्थिर हो जाते हैं, यानी बुद्धि के सहित, मन के सहित, बुद्धि के सहित पांच ज्ञानानि ज्ञान इंद्रियां जिस समय स्थिर हो जाते हैं। तो ज्ञानानि शब्द से वहां पंच ज्ञान इंद्रियों को ही कहा, इंद्रियों को ही कहा है, इसलिए कोई भिन्न अप्रासंगिक अर्थ हम नहीं कर रहे हैं। श्रुति सम्मत अर्थ है, दी शब्द का अर्थ इंद्रिय। इति विप्रस्यः, तो विप्र का अर्थ क्या? पहले क्या विप्र उपासक, या विप्रस्य विशेषेण व्याप्तस्य बृहतो महतो विपश्चित सर्वज्ञस्य, विप्रस्य का अर्थ यहां फिर सर्वज्ञ ईश्वरी कर दिया। परमात्मा को विप्र क्यों कहा? विशेषण व्याप्तस्य विप्रस्य, विशेष रूप से वह व्याप्त है। व्याप्तस्य बृहतो महतो, बृहत का अर्थ कर दिया महत। विप्रस्य बृहत कहा है ना, विशेष रूप में व्याप्त और महान। विपश्चित सर्वज्ञ से, विपक्ष का अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, तो सर्वज्ञ तो ईश्वर ही है, उपास्य परमात्मा ही है।